एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज हम निकोलस क्रिस्टोफ के जीवन और उनके काम को थोड़ा और करीब से जानेंगे। उनकी एक किताब आई है, संस्मरण है, चेजिंग होप अ रिपोर्टर्स लाइफ। हमारे पास इसी किताब के कुछ हिस्से हैं और क्रिस्टोफ की जो पत्रकारिता की यात्रा रही है उस पर कुछ खास विश्लेषण भी हैं। तो आज की बातचीत का मकसद यही है कि क्रिस्टोफ के अनुभव, उनकी पत्रकारिता को देखने का नजरिया और सबसे खास उनकी जो फिलॉसफी है उम्मीद का पीछा करना, उससे क्या मुख्य बातें निकलती हैं।
हाँ बिल्कुल,
मतलब ऐसी क्या चीज है जो उन्हें दुनिया की इतनी मुश्किल, कभी कभी तो बहुत ही निराशाजनक कहानियों के बीच भी उम्मीद से जोड़े रखती है।
ये दिलचस्प सवाल है। निकोलस क्रिस्टोफ आप जानते हैं, अमेरिका के काफी जाने माने पत्रकार, लेखक, स्तंभकार हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ तो 3 दशक से ज्यादा का सफर रहा उनका।
हाँ, बहुत लंबा वक्त।
और 2 बार पुलित्जर पुरस्कार भी मिला, खासकर मानवाधिकार और सामाजिक न्याय पर जो उन्होंने काम किया है उसके लिए।
उन्हें अक्सर कहा जाता है कि आज के जमाने में जहां इतनी निराशा है, शक है, वो पत्रकारिता के सबसे पक्के आशावादी हैं।
बिल्कुल, उनकी कहानी सिर्फ एक पत्रकार की कहानी नहीं है, ये इस बात का भी उदाहरण है कि जब आप सहानुभूति के साथ दूसरों का दर्द समझकर कहानी कहते हैं तो उसमें कितनी ताकत होती है।
तो चलिए उनकी कहानी की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। क्रिस्टोफ का सफर ओरेगन के यामा हिल में एक खेत से शुरू होता है। ये बात भी थोड़ी अजीब है, उनके माता पिता पोलिश और अर्मेनियाई अप्रवासी पृष्ठभूमि से थे, पढ़े लिखे अकेडमिक थे, लेकिन उन्होंने खेती की जिंदगी चुनी।
हाँ, और ये माहौल उनके लिए बहुत बहुत अहम था। उनके पिता, जो द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त यूरोप से भाग कर आए थे, वो प्रोफेसर थे, और माँ में वो एक तरह की, जिसे कहते हैं ना, अमेरिकी पायोनियर स्पिरिट थी।
अच्छा,
तो इस माहौल ने क्रिस्टोफ को जमीनी हकीकत सिखाई, मेहनत की इज्जत करना सिखाया और समुदाय से जुड़ाव का मतलब समझाया।
उन्होंने बचपन में ही ये देखा कि कैसे वॉशिंगटन में बनी नीतियां उनके आस पड़ोस के लोगों की जिंदगी पर असर डालती हैं।
बिल्कुल, किसी का खेत छन गया, किसी को स्कूल छोड़ना पड़ा, और एक खास घटना का वो जिक्र करते हैं। जब वो 12 साल के थे, पड़ोस में एक परिवार का घर जल गया था।
ओहो,
और उन्होंने देखा कि कैसे पूरा गाँव बिना किसी के कहे फौरन मदद के लिए आगे आ गया। उसी घटना ने, वो कहते हैं, उनके मन में सामूहिक करुणा की शक्ति का बीज बो दिया।
वाह, मतलब ये शुरुआती सबक थे उनके लिए।
जी,
फिर पढ़ाई के लिए वो हार्वर्ड गए, सरकार और अर्थशास्त्र पढ़ा, वहां छात्र राजनीति और पत्रकारिता में भी हाथ आजमाया।
हाँ, वहीं से शुरुआत हुई।
फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए रोड्स स्कॉलर बनकर, वहां कानून और अरबी पढ़ी। शायद यहीं से अंतर्राष्ट्रीय मामलों और पत्रकारिता की तरफ उनका झुकाव बढ़ा होगा, खासकर कम्युनिस्ट पोलैंड की यात्रा के बाद।
हाँ, और हार्वर्ड में ही उनकी मुलाकात शेरिल वुडन से हुई, जो बाद में उनकी पत्नी बनी और प्रोफेशनल पार्टनर भी।
जी,
1984 में वो न्यूयॉर्क टाइम्स से जुड़े, लेकिन असली बड़ा ब्रेक मिला 1989 में, चीन के थियानमेन स्क्वायर विरोध प्रदर्शन के दौरान।
हाँ, वो तो बहुत बड़ी घटना थी।
क्रिस्टोफर वुडन दोनों ने वहां से बहुत हिम्मत वाली रिपोर्टिंग की, जान जोखिम में डालकर, अधिकारियों से बचते बचाते। उन्होंने उन प्रदर्शनों की उम्मीद को भी दिखाया और फिर जिस बेरहमी से उन्हें कुचला गया उसे भी दुनिया के सामने लाए।
और इसी रिपोर्टिंग के लिए, जैसा आपने बताया, उन्हें 1990 में शेरिल वुडन के साथ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग का पुलित्जर मिला, और वो ये पुरस्कार पाने वाले पहले शादीशुदा जोड़े बने।
जी हाँ, ये अनुभव यकीनन उनके लिए एक तरह से परिवर्तनकारी था। इसने उन्हें सत्ता की क्रूरता दिखाई, आम लोगों का साहस दिखाया और आजाद पत्रकारिता की अहमियत का पाठ पढ़ाया।
बिल्कुल। फिर 2001 में एक और बड़ा बदलाव आया, वो रिपोर्टिंग से हटकर न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए कॉलम लिखने लगे।
हाँ, ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था। देखिए, रिपोर्टिंग में आप तथ्यों को सामने लाते हैं, है ना?
जी।
कॉलमनिस्ट के तौर पर आप सिर्फ घटनाओं की रिपोर्टिंग से आगे बढ़ते हैं, आप व्याख्या करते हैं, अपनी राय रखते हैं और कभी कभी तो कार्रवाई की वकालत भी करते हैं।
तो कह सकते हैं कि यहीं उन्हें अपनी असली आवाज मिली।
हाँ, एक तरह से वो आवाज जो सिर्फ खबर नहीं बताती बल्कि सही गलत का पक्ष भी लेती है।
और इसी भूमिका में उन्होंने दुनिया का ध्यान खींचा दारफुर में हो रहे नरसंहार जैसे मुद्दों पर, जिसके लिए उन्हें 2006 में दूसरा पुलित्जर मिला।
जी, उन्होंने कैम्बोडिया में सेक्स ट्रैफिकिंग, अफ्रीका में एज महामारी, ऐसे कई मुद्दों को उठाया, और वो सिर्फ दफ्तर में बैठ के लिखने वाले कॉलमनिस्ट नहीं थे।
नहीं, वो जमीन पर जाते थे।
बिल्कुल, जमीनी हकीकत से जुड़ी, जिसे एडवोकेसी जर्नलिज्म या पैरोकार पत्रकारिता कहते हैं, उसका उन्होंने बीड़ा उठाया। वो दुनिया के उन भुला दिए गए कोनों में गए उन लोगों की कहानियां लेकर आए जिनकी आवाजें कोई नहीं सुन रहा था।
हाल के सालों में उन्होंने अपना ध्यान घरेलू मुद्दों पर भी लगाया है, खासकर अपने गृह नगर यामहिल समेत जो अमेरिका के ग्रामीण इलाके हैं वहां की चुनौतियों पर।
हाँ, जैसे गरीबी, नशे की लत, शिक्षा में असमानता, इन समस्याओं पर भी उन्होंने वही सहानुभूति वाली जमीनी रिपोर्टिंग लागू की जो वो विदेशों में करते थे।
यानी दुनिया भर की कहानियों से लेकर अपने घर की दिक्कतों तक। और फिर इसका चरम था 2021 में जब उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स छोड़ दिया।
हाँ, और ओरेगन के गवर्नर का चुनाव लड़ने का फैसला किया। मतलब समस्याओं के बारे में लिखने से आगे बढ़कर सीधे उन्हें हल करने की कोशिश।
हालांकि वो अभियान निवास संबंधी नियमों के कारण जल्दी खत्म हो गया।
जी, लेकिन उस अनुभव ने उन्हें राजनीति की असलियत सिखाई और शायद पत्रकारिता के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता थी उसे और गहरा कर दिया। ये किताब चेजिंग होप इसी चिंतन का नतीजा है। दशकों के अनुभव, सफलता, विफलता और सीख का एक तरह से निचोड़।
चलिए अब उनके मूल दर्शन और मूल्यों पर बात करते हैं। क्रिस्टोफ के काम के पीछे एक सोच तो लगातार दिखती है, इसकी नींव में क्या है?
मेरे ख्याल से इसकी नींव में गहरी इंसानियत है। हर व्यक्ति की जो अंतर्निहित गरिमा होती है उसमें विश्वास, चाहे उनकी राष्ट्रीयता या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो।
इसे व्यावहारिक आदर्शवाद कह सकते हैं, प्रैग्मैटिक आइडियलिज्म।
हाँ बिल्कुल, वो बदलाव की संभावना में गहरा विश्वास रखते हैं, लेकिन साथ ही ये भी मानते हैं कि प्रगति धीमी होती है, निराशाजनक हो सकती है और अक्सर छोटे छोटे कदमों में होती है। यही यथार्थवाद उन्हें निराशावाद से बचाता है।
और उनमें समानुभूतिक सार्वभौमिकता भी दिखती है, मतलब वो यूनिवर्सल मानवाधिकारों की वकालत करते हैं लेकिन स्थानीय संदर्भों का भी सम्मान करते हैं।
जी, ये एक नाजुक संतुलन है। उनकी प्रेरणा में सबसे प्रमुख है जिसे वो खुद न्याय की अत्यधिक विकसित भावना कहते हैं,
ओवर डेवलप्ड सेंस ऑफ जस्टिस।
हाँ, अन्याय के प्रति एक तीव्र प्रतिक्रिया। पत्रकारिता उनके लिए इस अन्याय को संबोधित करने का, उसे सामने लाने का एक माध्यम है, एक औजार है।
वो पत्रकारिता के लोकतांत्रिक कार्य में भी विश्वास रखते हैं, नागरिकों को सूचित करना ताकि वे बेहतर निर्णय ले सकें। और हाँ, व्यक्तिगत कहानियों की शक्ति में उनका गहरा विश्वास है।
ये उनके काम का केंद्र है। वो मानते हैं कि आंकड़े लोगों को उदासीन बना सकते हैं। 100 लोगों की मौत एक आंकड़ा है, लेकिन एक व्यक्ति की मौत एक कहानी, वो त्रासदी है।
हाँ, जिसे पहचान योग्य पीड़ित प्रभाव कहते हैं।
बिल्कुल, एक व्यक्ति की कहानी सहानुभूति जगा सकती है और कार्रवाई के लिए प्रेरित कर सकती है। उनका काम लगातार ये दिखाता है कि हर आंकड़े के पीछे एक इंसान है, और पत्रकार का काम पाठक को उस संख्या के पीछे छिपे उस इंसान को दिखाना है।
ये बात तो है, एक कहानी सीधे दिल पर असर करती है, लेकिन इतना दुख और अन्याय लगातार देखते हुए वो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कैसे करते होंगे? ये भावनात्मक रूप से बहुत भारी होता होगा।
हाँ, होता है। लगता है उन्होंने जिसे मनोवैज्ञानिक स्थायी सहानुभूति कहते हैं वो विकसित कर ली है। यानी अन्याय के बारे में गहराई से महसूस करने की क्षमता, बिना भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट जाएं या फिर उदासीन हो जाएं।
ये कैसे मुमकिन है?
जब आलोचना होती है तो वो आत्मचिंतन करते हैं, गलतियां स्वीकार करते हैं, लेकिन अपने मूल मूल्यों पर टिके रहते हैं। और जब बहुत बड़ी भारी समस्याएं सामने होती हैं तो वो वृद्धिशील प्रगति पर, यानी धीरे धीरे होने वाली तरक्की पर और व्यक्तिगत सफलता की कहानियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
वो अफ्रीकी कहावत भी अक्सर कहते हैं।
हाँ, कि आप सब कुछ नहीं कर सकते लेकिन आपको कुछ ना करने से बचना चाहिए, या वो मशहूर स्टारफिश कहानी।
हाँ हाँ, याद है, समुद्र किनारे हजारों स्टारफिश फंसी हैं, एक बच्चा एक एक कर उन्हें पानी में फेंक रहा है। कोई पूछता है इससे क्या फर्क पड़ेगा,
तो बच्चा एक और स्टारफिश फेंकते हुए कहता है इससे इस वाली को फर्क पड़ा। ये छोटी जीत पर ध्यान केंद्रित करने का तरीका है निराशा से बचने का।
ये बात बहुत अहम है, एक स्टारफिश बचाना। चलिए अब उन खास मोड़ों पर आते हैं जिन्होंने उनके काम की दिशा बदली। अगर 3 सबसे महत्वपूर्ण मोड़ चुनने हों तो वो कौन से होंगे?
पहला तो निश्चित रूप से 1989 का थियानमेन स्क्वायर ही होगा। वो उनके लिए एक तरह की अग्नि परीक्षा थी।
हाँ बिल्कुल,
उसने उन्हें सीधे सीधे सत्ता की क्रूरता, आम लोगों का अदम्य साहस और स्वतंत्र पत्रकारिता का महत्व सिखाया। इसने उन्हें दुनिया के बड़े संवाददाताओं की श्रेणी में लाखड़ा किया और पुलित्जर दिलाया।
और दूसरा महत्वपूर्ण मोड़?
मेरे ख्याल से 2001 में कॉलमनिस्ट बनना और फिर दारफूर नरसंहार का कवरेज। यहीं पर उन्होंने पूरी तरह से पैरोकार पत्रकारिता को अपनाया।
हाँ, जहां वो सिर्फ रिपोर्ट नहीं कर रहे थे।
बिल्कुल, वो सक्रिय रूप से अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग कर रहे थे, दुनिया को उसकी निष्क्रियता के लिए शर्मिंदा कर रहे थे। इसने उन्हें एक रिपोर्टर से बढ़कर एक तरह का, आप कह सकते हैं, नैतिक योद्धा बना दिया। उन्होंने अपने मंच का इस्तेमाल नीतिगत बदलाव लाने के लिए किया।
ये वाकई एक बड़ा शिफ्ट था, रिपोर्टर से एक्टिविस्ट की भूमिका तक, और तीसरा निर्णायक मोड़।
तीसरा, मेरे विचार में शेरिल वुडन के साथ मिलकर हाफ द स्काई किताब लिखना और वैश्विक लैंगिक असमानता पर ध्यान केंद्रित करना।
हाँ, वो किताब भी बहुत प्रभावशाली रही।
इस प्रोजेक्ट ने उनकी बरसों की रिपोर्टिंग को एक शक्तिशाली विचार में ढाला कि महिलाओं का सशक्तिकरण न केवल नैतिक रूप से सही है, बल्कि ये गरीबी और अतिवाद से लड़ने का सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। इसने उनकी मिशन को और व्यापक बनाया और समाधान उन्मुख पत्रकारिता पर जोर दिया। सिर्फ समस्याओं का दस्तावेजीकरण नहीं, बल्कि सफल हस्तक्षेपों को उजागर करना।
तो क्रिस्टोफ के जीवन और काम से हम क्या मुख्य सबक सीख सकते हैं?
एक मुख्य सबक तो लगातार आशावाद की शक्ति है, लेकिन ये कोई भोलापन नहीं है। जैसा क्रिस्टोफ कहते हैं, आशा एक भावना नहीं है, यह एक अनुशासन है।
हाँ, ये एक सचेत चुनाव है, मुश्किल हालात में भी संभावना देखने का।
बिल्कुल।
तरक्की के छोटे छोटे संकेतों को ढूंढते रहने की कोशिश। दूसरा सबक है व्यक्तिगत कहानियों की प्रणालीगत शक्ति। क्रिस्टोफ दिखाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति की कहानी व्यापक बदलाव ला सकती है।
हाँ, वो हमें याद दिलाते हैं कि आंकड़ों की इस दुनिया में हर इंसान मायने रखता है।
उनके काम से सहानुभूति का महत्व भी पता चलता है, लेकिन साथ ही करुणा थकान का खतरा भी सामने आता है, लगातार दुख देखते रहने का जो भावनात्मक बोझ है।
और इससे निपटने के लिए, जैसे हमने पहले कहा, वो सक्रिय रूप से आशा और प्रगति की कहानियों की तलाश करते हैं, संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं।
उनका काम पत्रकार की भूमिका पर भी सवाल खड़े करता है ना? क्या पत्रकार को सिर्फ तटस्थ रहना चाहिए, या कभी कभी मानवीय दखल जरूरी हो जाता है? वो दारफूर वाली घटना याद है?
हाँ, जहाँ उन्होंने प्रसव पीड़ा से जूझ रही एक माँ की मदद के लिए अपने सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया था। कुछ लोगों ने इसे पत्रकारिता की सीमाओं का उल्लंघन माना,
लेकिन क्रिस्टोफ का तर्क था कि कभी कभी मानवीय शालीनता के लिए तटस्थता छोड़नी पड़ती है।
जी, और ये एक बहस है जो पत्रकारिता में हमेशा चलती रहती है। क्रिस्टोफ स्पष्ट रूप से उस पक्ष में है जहाँ जरूरत पड़ने पर मानवीय हस्तक्षेप को प्राथमिकता दी जाती है।
उन पर वाइट सेवियर होने का आरोप भी लगा है, मतलब एक श्वेत पश्चिमी पत्रकार जो विकासशील देशों में अश्वेत लोगों की पीड़ा को उजागर करके खुद को नायक बनाता है। ये एक गंभीर आलोचना है।
हाँ, और क्रिस्टोफ इस आलोचना को स्वीकार करते हैं, इस पर विचार भी करते हैं। वो मानते हैं कि स्थानीय आवाजों को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका तर्क ये है कि नरसंहार जैसी स्थितियों में गवाही देने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया जगाने की तत्काल आवश्यकता ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है।
उनका मानना है कि अपने मंच का इस्तेमाल करके वो ऐसी तवज्जो दिला सकते हैं जो शायद स्थानीय पत्रकारों के लिए मुमकिन न हो।
जी, और ऐसे में चुप रहना उनके लिए ज्यादा बड़ा नैतिक अपराध होगा। ये एक उलझावा मुद्दा है जिससे वो खुद भी जूझते रहते हैं।
तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो तीन सबसे खास बातें क्या होंगी? एक भावनात्मक, एक बौद्धिक और एक व्यवहारिक सीख।
भावनात्मक स्तर पर मेरे ख्याल से सबसे शक्तिशाली सीख यह है कि गवाही देने की, सच बोलने की एक भावनात्मक कीमत होती है। क्रिस्टोफ सिर्फ दुख दर्द लिखते नहीं, वो उसे महसूस करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि सहानुभूति एक दो तरफा रास्ता है, ये कहानी कहने वाले को भी बदल देता है।
बौद्धिक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण बात शायद यही है कि दुनिया आंकड़ों से नहीं, कहानियों से बदलती है। क्रिस्टोफ का पहचान योग्य पीड़ित प्रभाव का इस्तेमाल ये दिखाता है कि सहानुभूति जगाने और कार्रवाई के लिए प्रेरित करने के लिए मानवीय मनोविज्ञान को समझना कितना जरूरी है। कहानी कहना सिर्फ एक कला नहीं, बदलाव का एक शक्तिशाली औजार है।
और व्यवहारिक और सार्वभौमिक स्तर पर जो हम सब अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं, वो वही स्टारफिश वाली कहानी है। आप सब कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन आप किसी एक के लिए फर्क ला सकते हैं। ये बड़ी समस्याओं के सामने महसूस होने वाली बेबसी का एक तरह से इलाज है। यह हमें याद दिलाता है कि छोटे सोचे समझे कदम भी मायने रखते हैं।
बिल्कुल। क्रिस्टोफ का जीवन हमें दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति सहानुभूति, दृढ़ता और कहानी कहने की कला का उपयोग करके दुनिया पर प्रभाव डाल सकता है। उनका काम हमें लगातार सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने आसपास की दुनिया से कैसे जुड़ते हैं।
उनके काम से एक उत्तेजक प्रश्न ये भी उठता है जिस पर श्रोता आगे विचार कर सकते हैं। क्या व्यक्तिगत कहानियों पर अत्यधिक ध्यान कभी कभी उन बड़ी जटिल संरचनात्मक समस्याओं से ध्यान भटका सकता है?
और क्या आशा पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने से कभी कभी कठोर यथार्थवाद से समझौता हो सकता है? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर सोचने की जरूरत है। आज की इस गहरी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।
हम उम्मीद है कि निकोलस क्रिस्टोफ के जीवन और आशा का पीछा करने के उनके अथक प्रयास से मिली ये अंतर्दृष्टि जानकारीपूर्ण और विचारोत्तेजक रही होगी। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।